نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، دین میں مجاہدہ ہے، بغیر مجاہدے کے دین پر عمل نہیں ہو سکتا. من جاہدہ فإنما يجاهد لنفسه، جہد میں مشقت ہے. مجاہدہ کیوں ہے دین میں؟ دین میں مجاہدہ اس لیے ہے کہ دین کا ہر کام آدمی کی طبیعت کے خلاف ہے. دین کا ہر کام آدمی کی طبیعت کے خلاف ہے. لوگ چاہتے ہیں کہ طبیعت خود چلے، طبیعت نہیں چلے گی. انسان میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک فطرت ہے اور ایک طبیعت ہے. فطرت تو دین کے موافق ہے، الانسان یولد علی الفطرہ، اسلام دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، استعداد، اسلام کی استعداد ہے. طبیعت وہ خصوصیات ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے اس مٹی سے بننے کی وجہ سے، مٹی اور پانی سے اور ہوا سے اور آگ سے بننے کی وجہ سے. طبیعت کا دوسرا نام نفس ہے، طبیعت ہی کا نام نفس ہے. اور نفس تو امارہ بسو ہے، برائی کا حکم کرنے والا ہے. تو اس لیے طبیعت جو ہے نا وہ شریعت کے خلاف ہے، وہ دین کے خلاف ہے. طبیعت کے خلاف کا حکم امتحاناً ہے کہ آدمی مشقت برداشت کرتا ہے نہیں کرتا، مجاہدہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اسی میں ہماری آزمائش ہے، اسی میں ہماری کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے. اگر ہماری طبیعت میں مخالفت نہ ہوتی تو مجاہدہ کہے گا، جب مجاہدہ نہیں تو انعام کہے گا. اسی لیے جن کی طبیعت میں مخالفت نہیں ہے ان کو انعام بھی نہیں ہے. اب چاند کی طبیعت میں مخالفت نہیں ہے، سورج کی طبیعت میں مخالفت نہیں ہے، اس لیے اس کو انعام بھی نہیں ہے. بیچارہ کروڑوں سال سے خدمت کر رہا، کوئی جنت ونت نہیں ہے اس کو، اس کو کیا ثواب ملنے والا ہے؟ لاکھوں کروڑوں سالوں سے فرشتے جو ہے نا عبادت میں لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوں گے. نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، بلکہ جنت میں بھی کام لگا دی ان کو، جہنم میں بھی کام لگا دی. جنت کے بھی فرشتے ہیں، جہنم کے بھی فرشتے ہیں، وہاں پہ بھی ڈیوٹی لگا دی، انعام نہیں ہے. اس لیے دین کے سامنے آنے کی صورت میں ذہن کو پہلے مجاہدے کے لیے تیار کرنا ہی پڑتا ہے. دین پر چلنا ہے وہ تو مجاہدے کے لیے میں تیار ہو رہا ہوں، مائنڈ بنا لینا کہ جب دین پر چلیں گے تو مشقت برداشت کریں گے. جب مشقت برداشت کرنے کا ذہن بنا لیتے ہیں نا، تو پھر یہ سہولت کاریاں نہیں آتی ذہن میں. 20 رکعت کے بجائے 8 پڑھو، اتوار کے دن رمضان کی عید کرا دو کیسا بھی کر کے، چاند کھینچ کے نکالو، نہیں مکس گیدرنگ بھی صحیح ہے، نہیں فوٹو میں بھی صحیح ہے، نہیں یہ لیدر کے ساتھ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، جنرل ساتھ بھی ہو سکتا ہے، نہیں کھانا کھانے میں پینے میں گوشت کھانے میں اتنی احتیاط کی ضرورت نہیں ہے، اہل کتاب کا ذریعہ بھی چلتا، جھٹکے کا گوشت بھی کھا سکتے. یہ سب سہولت پسندی کی وجہ سے گمراہی آئی سو ہے. یہ سہولت پسندی نہیں ہوتی ہے، گمراہی آئی، مگر آئی سہولت پسندی کی وجہ سے، مجاہدے کے لیے پریپیئر نہیں ہونے کی وجہ سے. اگر آدمی مجاہدے کے لیے آمادہ ہو جائے تو پہلے سے طے ہے کہ بھائی میں نے وکلی میں سر دیا ہے، مجھے مشقت برداشت کرنی ہے. اس لیے دین کے اوپر عمل کرنے کا نام مجاہدہ ہی ہوتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ کیسی آیت ہے جو ہر جگہ پڑھی جا سکتی ہے. تبلیغ والے اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، تصوف والے اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، تعلیم والے اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، جہاد کرنے والے اپنے حساب سے پڑھتے ہیں، مگر ہے مجاہدہ. ہر عمل میں مشقت برداشت کرنا، اس لیے مجاہدہ حقیقی جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا نام ہے، وہی مجاہدہ حقیقی ہے، ہر حکم کو پورا کرنا. لیکن اس کی سہولت کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی سہولت کے لیے مجاہدہ حکمی ہوتا ہے، مجاہدہ حقیقی، مجاہدہ حکمی. تصوف میں دو مجاہدے ہوتے ہیں، ایک مجاہدہ حقیقی اور ایک مجاہدہ حکمی. تو مجاہدہ حکمی مجاہدہ حقیقی کے لیے ہے. تو مجاہدہ حکمی کے ارکان ان لوگوں کے پاس، صوفیہ کے پاس میں چار ہوتے ہیں جو کہ مشہور ہیں. کھانے پہ کنٹرول، کم کھانا، سونے پہ کنٹرول، کم سونا، بولنے پہ کنٹرول، کم بولنا، ملنے پہ کنٹرول، کم ملنا. اگر یہ چار مجاہدے آدمی کرا تو وہ چار، وہ باقیہ جو مجاہدے اصل دین پر چلنے کے، وہ آسان ہو جاتے. یہ استعداد بناتے ہیں. اور عجیب بات آپ دیکھیں گے کہ رمضان میں جو نظام ہے اللہ پاک کی طرف سے، وہ اپنی ذات میں مقصود ہونے کی حیثیت سے بھی ہے اور استعداد بنانے کا کام کرنے کی حیثیت سے بھی ہے. دو دھاری تلوار ہے یہ. روزہ جو ہے نا اسلام کے ارکان میں سے ہے، فرض ہے، مقصود بھی ذات ہے، اپنی ذات میں مقصود ہے کہ روزہ. لیکن روزہ، تراویح، جتنے بھی اعمال رمضان میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اعمال ہونے کی جگہ اپنی حیثیت الگ رکھتے ہیں اور استعداد بنانے کی کا کام الگ کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھانے پر کنٹرول کے واسطے روزہ رکھ دیا، اور سونے پر کنٹرول کے واسطے تراویح رکھ دی، اور ملنے پر کنٹرول کے واسطے اعتکاف رکھ دیا، اور بولنے پر کنٹرول کے واسطے قرآن شریف کی تلاوت رکھ دی. اعمال جو رمضان کے اللہ پاک نے مشروع فرمائے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کا مہینہ ہے اسپیشل یہ، جتنی چاہے تلاوت کرو، جتنی تلاوت کرو گے اتنی آسان. پورے سال بھر میں جتنا قرآن آدمی نہیں پڑھ پاتا، اتنا رمضان میں پڑھ لیتا ہے اگر ہمت کرے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. دیکھیے، کچھ عجب نہیں ہے، یہی سیکریٹ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم کو روزے اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم بچنے لگ جاؤ. تقوی کی حقیقت ہے مخالفت سے بچنا. تقوی کے معنی اصل بچنے سے، وقایہ سے ہے یہ. اصل واو کو تا سے بدلے ہیں، کبھی وہیں رکھ دیتے ہیں، کبھی اخیر میں رکھ دیتے ہیں. وعدن کا عیدتن کر دیتے ہیں، وعدن سے عیدتن ہے نا. واو کو واو کی جگہ واو کو تا سے بدلے، وہ تا لے آ کے اخیر میں لگائے. آئیے سامنے، آ جائیے ادھر، آئیے. تین میل گئے، میں تین میل کے 30 میل چل گیا.
نہیں،
جن دواؤں میں الکوہل ہوتی ہے نا، وہ ہر الکوہل تو منع نہیں ہوتا، تھوڑا سا اس میں لچک رہتی ہے. دیکھ لینا، جتنے ہیمیوپیتھک دوائیں ہوتی ہے وہ تو زیادہ تر اس میں الکوہل ہی ہوتی ہے. ہیمیوپیتھک دوائیں حالانکہ حلال ہیں، اصل میں وہ الکوہل جو ہے نا سنتھیٹک ہوتا ہے. سنتھیٹک الکوہل جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہوتا، اس کی مقدار نشہ ناپاک ہے. اس کو اتنی مقدار میں استعمال کرنا کہ نشے تک جائے، وہ ناپاک. وہ حرام ہے. اس لیے دواؤں میں بھی دیکھ لینا کہ اگر سنتھیٹک والی الکوہل ہے، آپ لوگ تو آسانی سے معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر لوگ ہیں. زیادہ یہی استعمال ہوتی ہے سنا، کیونکہ وہ تو مہنگی پڑتی کہتے بہت. اور زیادہ بے فکری ہے سمجھا،
بالکل.
یہ عرض کیا جا رہا تھا مجاہدہ حقیقی کے لیے مجاہدہ حکمی اس لیے ہوتا ہے کہ مجاہدہ حکمی مجاہدہ حقیقی کے لیے آدمی کو تیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو تیاری کا مہینہ بنایا ہوا ہے. اپنی ذات میں بھی اعمال مقصود ہیں, یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ پریپریشن کے ہی اعمال ہیں خالی, ایسا نہیں ہے. اپنی ذات میں بھی اعمال مقصود ہیں. خالی پریپریشن کے لیے مقصود ہونا اپنی ذات میں مقصود ہونے میں بہت بڑا فرق ہے. خالی پریپریشن کے لیے ہوا تو آدمی پریپیئر کسی اور راستے سے ہوا تو یہ حکم معاف ہو جاتا, ویسا تو نہیں ہے نا. کوئی آدمی کم کھانے کی عادت ڈال لے تو اس کو روزہ نہیں ہے, ایسا نہیں ہوا. کوئی آدمی کم جاگنے کی عادت ڈال لے تو اس کو تراویح نہیں ہے, اس کا تو ایسا تو نہیں بول سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے دیے, روزے کا روزہ ہو گیا, کثرت شہوت بطن پیٹ کی خواہش کی کو توڑنا, پیٹ میں پیٹ سے ہونے والی تقاضوں کو توڑنا, کثر منے توڑنا, اس کے لیے روزہ ہے. آدمی کو مضمحل کرتی ہے وہ چیز, جو آدمی کو مضمحل کر دینے والی چیز ہوگی وہ آدمی شرارت پہ آمادہ نہیں ہوتا. جب گھوڑے کو سداتے ہیں, شیر کو عادی بناتے ہیں سرکس میں, تو ان کو مضمحل کرتے ہیں, کھانا پینا نہیں دیتے ان کو, تو وہ شرارت چھوڑ دیتا ہے. تو کھانے پہ کنٹرول شرارت توڑنے کے لیے ہے نفس کی. اس لیے آپ دیکھو کہ اثر کے بعد جو ہے نا کیسا آدمی ڈھیلا پڑ جاتا ہے بھوک کی وجہ سے, اسے کچھ نہیں ہوتا, اس کا ذہن برائی کی طرف بھی نہیں چلتا. لڑنے کو تو آتا انہیں, لیکن یہ کہ برے عمل کی طرف نہیں چلتا اس کا ذہن. لڑنے کو اس لیے آتا ہے کہ چڑچڑا ہو جاتا ہے بھوک کی وجہ سے. اس کا مطلب یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کے لیے جو چیز رکاوٹ ہے اصل, وہ آدمی کی خواہشات ہیں. ان خواہشات کو مضمحل کرنے کے لیے روزہ ہے. تو خواہشات چونکہ رکاوٹ ہے, تو اسلام کا ایک بہت بڑا بنیادی اصول ہے سد رکاوٹ, جو رکاوٹ ہے وہ دور کرنا. سد ذرائع بھی بولتے ہیں اس کو. اسلام کے ایک بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے سد ذرائع. سد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ناپسند ہے, جو چیز ممنوع ہے, اس کے جو ذریعے ہیں ان پر روک لگانا. یہ اسلام کا اصول ہے اور دنیا پوری اس کو اختیار کرتی ہے. دنیا میں جتنے قوانین ہوتے ہیں اس کے اندر بڑا حصہ اسی کا ہوتا ہے اور روک لگانے کا. ایکسیڈنٹ میں چوٹ لگ سکتی ہے, لہذا سامنے بیگ لگا دیتے کہ اگر ایسا ہو جائے تو کم از کم منہ کو مار نہ لگے, جان بچ جائے آدمی کی. اور جتنی زیادہ مہنگی گاڑی ہوگی اتنا زیادہ اس کا سسٹم ویسا ہوں گا رکاوٹوں کو دور کرنے والا. یہ جتنے سسٹم نئے نئے آتے جا رہے ہیں اس کے اندر, کیا بولتے ہیں اس کو, فیچر آتے جا رہے ہیں گاڑیوں میں, اس میں اس میں, ان سب میں یہی اصول کام کرتا ہے. بازو والی گاڑی آ رہی ہے تو ٹی ٹی کرنا شروع کر دیتی ہے گاڑی اپنی, لائٹ آ جاتی ہے اس میں, مرر کے اندر بھی لائٹ آنے لگ جاتی ہے. اب تو ایک آٹومیٹک بریک بھی پڑ جائے گا, پڑ بھی رہا ہے, ایکسیڈنٹ نہیں ہونا. گھروں کے سامنے آپ کے حصہ واکنگ کا, اس کے بعد میں روڈ شروع ہوں گی. کیوں؟ اگر گھر بالکل روڈ کو لگ کے رہیں گا تو کبھی بھی لگ جائیں گے, ٹکر لگ جائیں گے. دوا خانے میں کتنے سدے ذرائع ہوتے ہیں. جو سرجری روم ہے اس کے اندر جو ہے نا آپ چپل پہن کے نہیں جا سکتے, عام آدمی نہیں جا سکتا. یہ پڑھنا, ناک میں کپڑا لگاؤ, ہاتھ میں وہ پہنو, یہ کرو, پھر اس کے بعد سینیٹائزر لگاؤ, یہ کرو, یہ سب سدے ذرائع ہیں بیماریوں سے روکنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں. سدے ذرائع کا اصول پوری دنیا میں سب جگہوں پہ چلتا ہے, حفاظتی نظام میں چلتا ہے, حکومتوں میں چلتا ہے, بلڈنگوں میں چلتا ہے, تعمیرات میں چلتا ہے, برجوں میں چلتا ہے, بلڈنگوں میں چلتا ہے. اسلام میں بھی ہے سدے ذرائع کا نظام. اسلام میں جو خلوت مال اجنبیہ, اجنبیہ کے ساتھ میں خلوت منع ہے تھا, اجنبی عورت کے ساتھ میں آپ تنہا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ ذریعہ ہے یہ آگے فساد کا. اجنبی عورت کو دیکھنے سے منع کیا گیا, اور اجنبی مرد کو دیکھنے سے عورت کو منع کیا گیا. क्यों? इसलिए कि ये जरिया है दुनिया में मुब्तला होने का। बात करने से मना किया गया, सद्य जराए में है ये सब चीज। बेशुमार आपको ऐसे अहकाम मिल जाएंगे इस्लाम में जिसका ताल्लुक सद्य जराए से है, जो गलती में पड़ जाने के चांसेस होते हैं उससे रोकना, पहले से ही रोक लेना। मुश्तबा चीज से रुकने का हुक्म भी इसीलिए है, जो मुश्तबा चीज में पड़ेगा तो ममनू चीज में तो पड़ ही जाएगा। मन इरतआ हौल अलहिमा वकाओ, जो चरागाह के करीब में मुंह मारेगा जिसका जानवर, वो चरागाह में यानी खेत में भी मुंह मार ही देगा। वो खेत के किनारे पे अगर आप चराएंगे जानवर को तो इधर से भी खा लेगा, उसमें से भी मुंह मार लेगा। तो चूंकि ख्वाहिश जो इंसान की है, जज्बात जो इंसान के हैं, वो ही मुब्तला करते हैं दीन के खिलाफ में चलने में, दीन के खिलाफ का काम वही कराते हैं। इसीलिए फरमाया गया हुफ्फत नार बिश शहवात, आग को घेरा गया है शहवात से। शहवत के आगे आग ही है, ख्वाहिशात के आगे आग है। चाहे वो ख्वाहिश खाने पीने की हो, चाहे वो ख्वाहिश पहने ओढ़ने की हो, चाहे वो ख्वाहिश रियासत की हो, सियासत की हो, इक्तदार की हो, चाहे वो ख्वाहिश जो है ना जज्बात की हो, नफ्स की हो। हुफ्फत नारु बिशहवात, आग को घेरा गया है शहवात से। और खिलाफ तबीयत में मुजाहिदा है। सिर्फ मैं हुफ्फत जन्नत बिल मकारी, जन्नत को बाउंड्री लगाई गई है नागवार बातों की, नागवारियों के साथ में जन्नत की बाउंड्री। जितनी नागवारियों को बंदे इख्तियार करेगा जन्नत में पहुंचाने वाली होंगी वो। नागवारी गैर इख्तियारी हो तो वो भी जन्नत में पहुंचाती है। हालात हैं गैर इख्तियारी हालात, जॉब के हालात, सेहत के हालात, इज्जत के हालात, लोगों की मुखालफतों के हालात, खानदान वालों की तरफ से बातें पेश आ जाती हैं, लड़कियों की तरफ से शादीशुदा बच्चियों की तरफ से हो जाती हैं, वगैरह वगैरह। हुफ्फतिल जन्नत बिल, उसमें सब में ईमान वाले के लिए सवाब है। बल्कि ईमान वाले के लिए हालात जो है ना अलामत ईमान में से समझा गया है। ईमान की अलामतों में से एक ये भी है कि ईमान वाला कोई ना कोई हाल में होगा। मशहूर किस्सा है ना एक सहाबिया का, एक सहाबिया की शादी एक साहब से हुई। बहुत सेहतमंद आदमी थे वो और बहुत पैसे वाले भी थे वो, अखलाक के भी बहुत अच्छे थे वो। तो आदमी अखलाक के एतबार से भी अच्छा है, माल के एतबार से भी अच्छा है, सेहत के एतबार से भी अच्छा है। अब शादी होगी तो बीवी के साथ तो अच्छा सलूक करेगा, वो अखलाक से पेश आएगा। बड़े अच्छे दिन गुजर रहे थे, मज़े की ज़िंदगी गुजर रही। बीवी ने अचानक कहा कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। ये सोच में पड़ गया बेचारा कि मुझसे तलाक क्यों मांग रही है, मैं इसके साथ कोई बदअखलाकी नहीं करता, बदमामलगी नहीं करता, कोई तंगी नहीं करता। अरे भाई क्यों? तो बस मैं आपसे तलाक चाहती हूँ, तलाक दे। और वो बातों बातों में किसी बात के लिए वो बाहर निकले घर से, तो उनको ठोकर लग गई। ठोकर में पैर का जो नाखून था वो उखड़ गया, घोटे का नाखून उखड़ गया, इतनी जोर की ठोकर लगी। वो घर वापस आए, अरे रे 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 ये क्या हुआ, ये क्या? अरे मैं बाहर जा रहा था, ठोकर लगी। खैर वो पट्टी उट्टी की उनके पैर की, कहने लगे मुझे तलाक नहीं चाहिए। अरे अभी तो कह रही थी तलाक, मुझे टेंशन दे दिया और अभी कह रही नहीं चाहिए। तो कहने लगे मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं, कोई तकलीफ ही नहीं थी तुम्हारे को। तो मैं ये समझी कि मैं मुनाफिक की बीवी तो नहीं हूं, मैं ये समझी कि मैं कोई मुनाफिक की बीवी तो नहीं हूं, इसलिए मैंने सोचा कि इससे जान छोड़ाओ। ईमान वाला तो हाल में होता है कोई ना कोई, ये तो मजे में है, इसकी तो कोई तकलीफ ही नहीं है। ला यज़ालुल मोमिन तमीलुहु रियाह, ईमान वाले को हवाएं, हादिसात की हवाएं इधर से उधर झुकाती रहती हैं, जैसे कौपल को, छोटे से पौधे को हवा जो है ना इधर से उधर झुकाती रहती है। और मुनाफिक की मिसाल सूखे तने की है, हवा से कुछ नहीं होता उसको। हत्ता तुस्तहसद मर्रतन वाहिदतन, उसको एक साथ उखाड़ के जाल आग में डाला जाता है। जो दरख्त सूख जाता है उसको जलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो गैर इख्तियारी तौर पर मकारे खिलाफ तबीयत उम्र पेश आए वो, या इख्तियारी जो मुजाहिदे होते हैं वो, अब अल्लाह के रास्ते का सफर है इख्तियारी मुजाहिदा, बे आराम होना, बेहैसियत होना लोगों में, आपका कोई भी कुछ भी होंगे तुरंखा अपनी जगह के सामने वाले को तो नहीं पहचानता आपको, लिहाजा उन्हें आपको कुछ भी नहीं पूछेंगा, ना चाय को पूछेंगे ना खाने को पूछेंगे, बात भी दरवाजे में से खड़े खड़े करेंगे आपसे, भी कर दिया अखलाक से तो बहुत मेहरबानी है उसकी, नहीं तो जोर से दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाता, गालियां भी दे देता, मस्जिद में आके सो रहे हैं कौन पूछ रहा आपसे खाना मिला नहीं मिला क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुजाहिदा है, मकारे मशक्क़तों को बर्दाश्त करना है, इसमें हैसियत का भी मुजाहिदा है और जिस्मानी मुजाहिदा भी है और लोगों के साथ में पेश आने वाला मुजाहिदा भी है, इसलिए इसका मर्तबा बहुत बुलंद है। और ये मुजाहिदा खालिस दूसरे की खातिर से भी है हिदायत की तलब में, अल्लाह के हुक्म की वजह से, एक अपने लिए होता है एक दूसरे की खातिर से भी, तो इसलिए इसका मर्तबा बहुत ज़्यादा है, अल्लाह के रास्ते का मुजाहिदा बहुत ज़्यादा होता है उसका सवाब। इसलिए सहाबे किराम अल्लाह के रास्ते के मुजाहिदे के लिए बहुत खुशी का इजहार करते थे जब उनको उसमें तकलीफ पेश आती थी, मशक्क़त पेश आती थी, खुद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार किया, एक मरतबा आपकी उंगली को जख्मी, आपकी उंगली जख्मी हो गई, खून निकलने लगा, इन ही अल्लाह इसबाउन दमी थी वफ़ी सबीलिल्लाह मा लकी थी, एक उंगली है जिससे खून निकल रहा है और वो भी अल्लाह के रास्ते में, ज़रा नवाजी है उनकी। मशक्क़त के लिए, तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए, मशक्क़त बर्दाश्त करने के लिए, मुजाहिदा करने के लिए जहन बनाना, ये इस्तेदाद पैदा करने वाली चीज़ है आदमी को दीन पर चलने के लिए। इसके बरखिलाफ़ है आराम तलबी, इसके बरखिलाफ़ है आराम तलबी, हुब्बुल आयश भी बोलते हैं इसको, आराम तलबी की मोहब्बत अगर आ गई, मज़ेदार ज़िंदगी गुजारने का शौक़ बहुत नुकसानदेह चीज़ है, ये बीमारी है, इंसान की रूहानी बीमारियों में से बहुत बड़ी बीमारी है जिससे आजकल शायद ही कोई बचा हुआ है, ख़ासतौर पर अमेरिका में रहने वाला, नहीं तो पूरी दुनिया का हर इंसान जो है ना मज़ेदार ज़िंदगी का शायक होता है, लेकिन यहाँ तो आदमी शायक भी हो जाता है आदि भी हो जाता है, शायक तो रहता ही रहता है आदि भी हो जाता है। आप यहाँ रहने के बाद में अपने इंडिया पाकिस्तान जब जाते हैं वहाँ पर तो कारपेट बिछा हुआ नहीं होता ना जगह जगह, वहाँ चलते रहते हो पैरों को तकलीफ होती रहती, इतनी आदत हो चुकी है। यहाँ पर तो ये हाल हो गया कि फर्श मखमल पर मेरे पैर छिले जाते हैं, केला खाने से मेरे दांत हिले जाते हैं, मौज खाए तो भी दांत हिल रहे हैं, मखमल पे चल रहे हैं तो भी जो है ना पैर छिल रहे हैं, वो कैफियत में आ जाते हैं। तो कंकर के ऊपर चलना पड़ जाए, फर्श पे चलना पड़ जाए, बगैर चप्पल के चलना पड़ जाए तो क्या हाल होगा। और साहब किराम को जब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता कि अल्लाह के रास्ते में जाओ, तो उनको ये देखने की भी गुंजाइश नहीं होती थी कि हमारे पास चप्पल भी है कि नहीं। पूरा का पूरा सहाबे किराम का मजमा जो है ना बगैर चप्पल के अल्लाह के रास्ते में गया, जिसकी वजह से पैरों में जख्म आ गए पत्थरों से चुभ कर और खून निकलना शुरू हो गया, तो उन्होंने कपड़ों को अपने पैरों पर लपेट दिया, कपड़ों के पीसेस को। इसलिए उस लड़ाई का नाम गजवा जातुर रिका है, वो गजवा जो कपड़ों को पैर पे लपेट के किया गया था, कपड़ों से पैर को लपेट के किया गया था, कोई एक दो नहीं पूरा लश्कर। उनको दीन के लिए मशक्कत बर्दाश्त करने में ये कोई रुकावट ही नहीं थी कि चप्पल ही नहीं है, जिसके पास चप्पल नहीं है उसके पास क्या क्या होगा बोलो आप, उसके पास दूसरा क्या होगा, उसके पास चप्पल ही नहीं है पहनने को, खाने की तंगी। मशक्कत बर्दाश्त करने का एक जहन होता है और आराम की आराम तलबी को छोड़ने का एक जहन होता है, ये असल चीज है आदमी के अंदर आना, वो दीन के आगे के काम सब आसान हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया ना कि जब तुम हुब्बुल आयश में आ जाओगे तो फिर दीन का काम छोड़ दोगे, दीन की मेहनत नहीं करोगे, अल्लाह के रास्ते की मेहनत छोड़ दोगे जब हुब्बुल आयश में आ जाओगे, अमर बिल मारूफ नहीं कर पाओगे, नहीं अनिल मुनकर नहीं कर पाओगे, अल्लाह के लिए नफर और सफर नहीं कर पाओगे। जब अब मजेदार जिंदगी गुजारने की आदत हो जाती है, टाइम टू टाइम खाना मिलना, टाइम टू टाइम आना जाना, सोना वक्त पे मिलना, खाना वक्त पे मिलना, मर्जी का खाना मिलना, मर्जी का बिस्तर मिलना, एक्स्ट्रा कोई ऐसी चीज बर्डन के सर पे नहीं पड़ना, कौन जाना चाहता है? तो रमजान के इस मुबारक महीने में यह चीज भी गोया यूं समझ लीजिए कि हमारे अंदर पैदा की जाती है। रमजान का महीना जो है वो कुरान पर अमल करने की इस्तेदाद लाने का महीना है। असल में कुरान पाक नाजिल किया अल्लाह पाक ने, और जिस महीने में नाजिल किया उस महीने के रोजे रखा दिए ताकि इस कुरान पर अमल करने की इस्तेदाद भी आ जाए। अमल वो फर्ज फरमाया, वो इबादत अता फरमाई जो इबादत की इबादत है और उसके साथ इस्तेदाद की इस्तेदाद है। दिन में खाने पे और घर वालों से मिलने पे पाबंदी लगा दी, ख्वाहिश को तोड़ा, रात में जागने पे पाबंदी लगा दी, तो ये नहीं कि फौरन आप सो जाओ, और वो भी नमाज भी इतनी लगा दी खूब पेट भर खाने के बाद, अब इधर तरावी इफ्तार करके खाना खा के संभले संभले तक इशा का वक्त आ जाता। आम हालतों के अंदर सबसे लंबी नमाज कौन सी दिखती है? बोले तो ईशा की दिखती है, क्योंकि बोले तो फर्ज पढ़ना है, फिर उसका सुन्नत पढ़ना है, फिर वाजिब पढ़ना है, अल्लाह ताला ने उसमें और लगा दिए 20, और 20 जो है ना उतनी रकातें हैं जितनी रकातें गैर रमजान में फर्ज होती हैं। फजर की 2, जोहर की 4, असर की 4, मगरिब की 3, ईशा की 4 और 3 वाजिब के 20 रकातें, उतनी 20 इजाफा कर दी, डबल पढ़ो रमजान में। और ये डबल जो किया एक साथ किया, उसका मुजाहिदा पड़ गया, और उसमें कुरान पाक भी रख दिया, तो कुरान भी सुनो। अब अपन इन्ना आते ना अब कुल्ला के आदि होते हैं, अब यहाँ इमाम साहब जो है ना डेढ़ पारा पढ़ते हैं, दो पारे पढ़ते हैं, हमारे इमाम साहब तो हमारे को रोजाना 5 पारे सुना के लाए, क्योंकि सफर करना रहता है ना, तो पहले कुरान पाक तो सुन लेना भाई, बल्कि हम लोग 5 दिन में पहले कुरान पाक सुन लेते हैं आने से पहले, सफर शुरू करने से पहले। और यार ये लोग सफर में हैं बल्कि बहुत मजे कर रहे हैं, बोले यार ये लोग आधे घंटे में तरावी पढ़ ले रहे हैं, बोले आलम तरह के मजे हैं ये लोगों के, बोलते देख के वो पीछे क्या करके आए ऐसा नहीं मालूम, वो तुम्हारा पूरा जो मजमे का वक्त है ना वो खड़े रहने का वो जमा करना पड़ता हूँ। लेकिन रात में अल्लाह तबारक व तआला ने तरावी के जरिए से नींद पर कंट्रोल बता दी, कम सोता बंदा, सहर में भी उठना है, तरावी भी पढ़ना है ईशा के बाद, और अगर बयान भी सुनना पड़ गया तो माशाल्लाह सोने पे सुहागा। उसको बोलो 2 तकरीरें नहीं हो सकती, एक ही हो सकती है, या तो तू कर या मैं। माशाल्लाह बहुत ही हिम्मत वाला बहुत जरी बच्चा है, रास्ते में भी हम लोग तजुर्बा करे उसका, बहुत बेतकल्लुक रहता है, मस्त खलंदर है। और रमजान मुबारक में एहतिकाफ लगा दिया, एहतिकाफ जो है ना वो किल्लत इख्तिलात माल अनाम के लिए, मखलूक से मिलना कम करना, 4 मुजाहिदे के 4 अरकान है ना सूफिया के पास, कम खाना, कम सोना, कम मिलना, कम बोलना, मिलना कम बोलना कम, तो इख्तिलात की कमी के वास्ते एहतिकाफ है। एहतिकाफ अपनी जात में मतलूब है, उससे एक खास फायदा भी है, और बोलने की कमी को कुरान पाक दिया है, ये पढ़ो अल्लाह। इस्लाम का एक मिजाज और है खास जहन में रखने का, वो है कि मुतबादिल दिया जाता है, किसी चीज को रोकेंगे आप तो मुतबादिल देना, कोई काम करा रहे हैं आप तो उसका मुतबादिल दिया तो आसान हो जाता है। जब तक मारिफुल कुरान नहीं छपी थी मुफ्ती शफी साहब की, उस जमाने में तफहीमुल कुरान बहुत चलती थी, ये अबुल आला मौदूदी पहले लिखे, मगर तफहीमुल कुरान जो है ना वो बेहूदगियों के मजमूए का नाम है, इतनी गलत तफसीर पूरी दुनिया में आज तक नहीं लिखी गई, तमीम कुरान की उतनी गलत वाली तफसीर आज तक दुनिया में नहीं लिखी गई। बेहिसाब बेहिसाब बोलते हैं आप। तकसीरात तफहीम के नाम से एक किताब है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान की, खाली थोड़े एक आधा पारा पौन पारा एक पारा क्या तजिया करे तो किताब भर गई उनकी, इतनी गलतियां हैं उसमें, अजीब तफसीर है वो तफहीमुल कुरान, बहुत गलत तफसीर है। तो उसको नहीं पढ़ना बल्कि उलमा फतवा देते थे तो कोई भी नहीं सुनता था, खासतौर पर ये तालीम याफ्ता कॉलेज के इसके उसके जो रहते ना, ये अपने को पढ़े लिखे समझते हैं तो तफहीमुल कुरान बहुत पढ़ते थे, उनको नहीं पढ़ना बोले तो कोई भी नहीं सुनता था। लेकिन जब मारिफुल कुरान आ गई और उलमा ने ये राय दी कि भाई क्या पढ़ना है तो बोले ये मारिफुल कुरान पढ़ो, तो तफहीम ऑटोमेटिक छूट गई। मुतबादिल देने का ये फ़ायदा होता है, मुतबादिल देने से ये फ़ायदा होता है कि तफहीमुल कुरान की ज़रूरत ही क्या है आपको, जब मारिफुल कुरान आपके सामने एक अथेंटिक और मुस्तनद और सही तफसीर आपके सामने है तो फिर गलत तफसीर पढ़ते क्यों हैं, ऐसा है। तो मुतबादिल दिया गया कि खामोश रहो बोलो नहीं तो कुरान शरीफ पढ़ो, अगर बोलो मत बोलते गुफ्तगु कम करो बोलते और कुरान शरीफ न दिया जाता तो कौन खामोश कौन बढ़ता, कोई भी नहीं बढ़ता। अब पढ़ो जितना पढ़ना है, अल्लाह से बात करो, मखलूक से बात मत करो खालिक से करो। मुतालिफ फरमाते हैं ना कि जब मुझे अल्लाह से बात करने की ख्वाहिश होती है तो मैं कुरान पाक की तिलावत शुरू कर देता हूँ और नमाज पढ़ता हूँ, नमाज में भी अल्लाह से बातचीत है और कुरान पाक में भी अल्लाह से बातचीत है। और कुरान में पहलू ये होता है कि कुरान में पहलू ये है कि अल्लाह बंदे से बात करते हैं, नमाज का पहलू ये होता है कि बंदा अल्लाह से बात करता है। जब मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ तो नमाज शुरू कर देता हूँ, जब सोचता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो कुरान शुरू कर देता हूँ। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मलफूज़ है, कुरान पाक की तिलावत लगा दी। कुरान पाक के समझने की ऊपर तवज्जो उतनी नहीं देना है, अगर अल्लाह ने वो इस्तेदाद दी है समझने की तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो नहीं है तो खाली कुरान पाक को दोहराना, कुरान के अल्फाज को दोहराना, कुरान को देखना, कुरान के अल्फाज को रिपीट करना, ये असल इबादत है, वो तिलावत असल है इसमें, समझे या ना समझे दोनों में कुर्ब है अल्लाह तबारक व तआला, समझे तो और अच्छी बात है, लेकिन बाल लोग समझने की वजह से कम किरात करते हैं, वो नहीं करने का। समझने के लिए चाहे तो छोटा सा हिस्सा पढ़ लो, लेकिन तिलावत जो है ना जिसका ताल्लुक समझने से ना वहाँ उसको बस ये कि वो जो अल्लाह का कलाम है वो इसको रिपीट करना है, असल अल्लाह से निकला हुआ कलाम है, अल्लाह की बात है वो। जब आदमी उस बात को अपनी ज़ुबान से दोहराता है तो अल्लाह तबारक व ताला इतने करीब हो जाते हैं बंदे से कि अल्लाह तबारक व ताला बंदे के होठों से लग जाते हैं, इसको भी पता चल जा रहा है अपन मजलिस कर रहे हैं, आम हालतों में नहीं बजे। इसी वजह से इस मुबारक महीने में कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम है ज़्यादा से ज़्यादा, रात में दिन में पढ़ना भी सुनना भी, तदा नमाज में भी पढ़ना गैर नमाज में भी पढ़ना, नमाज में भी सुनना गैर नमाज में भी सुनना, जितनी ज़्यादा कुरान शरीफ की क़िराअत हो सके। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह ने अपने फ़ज़ाइल के अंदर अपना अपने घर के मामला जो लिखते हैं लिखे हैं, कैसे लिखे हैं, मैं हमारे घर की औरतें कामकाज करते हुए मेहमान नवाजी करते हुए 15-20 पारे पढ़ लेती हैं रोज़ाना, अपन तो सोच भी नहीं सकते। औरतों का ये मामूल है तो मर्दों का क्या कहना, मर्दों का क्या हाल रहता हो, मर्दों का दिन में कुरान एक कुरान रात में कुरान। एक मरतबा मैं निज़ामुद्दीन 2 महीने की तरतीब में था रमज़ान में, तो रमज़ान में जो है ना देर में तरावी होती, खाना होना खाने के बाद पुनः से तरावी होती, 1:30 होता 1:15 होता, तो रात की 11-11:30 जो है मैं तरावी ख़त्म होने के बाद में चाय पीने सामने होटल में पान खाने गया, तो पान बहुत खाता था तो पान खाए कम आ रहा था, तो यूसुफ सेलोनी साहब अंदर जा रहे थे उधर मस्तूरत वाले एरिया में, ऐसा मैं बहुत दिन पहले की बात बोल रहा हूँ आपसे, लड़ाई झगड़े से बहुत पहले की बात है। तो सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम इख्तलात, तो मैंने कहा खैरियत, रात के 12 बजे आप इधर जा रहे हैं, तो बोले नहीं आपको नहीं मालूम, मैंने कहा क्या, तो बोले यहाँ पे आप हज़रत मौलाना ज़ुबैर साहब रहमतुल्लाह अलैह जो है 10 पारे नफिल में सुनाते हैं, 10 पारे नवाफिल में मस्तूरात को सुनाते हैं, तो उसमें कुछ मर्द भी हम लोग खड़े हो जाते हैं साथ में, इसमें जा रहा हूँ बोल के बोल। और मौलाना जुबैर साहब ही तरावी पढ़ाते थे, और मौलाना जुबैर साहब ही फिर उसके बाद तहज्जुद में अपने बाबा को कुरान शरीफ सुनाते थे, और मौलाना जुबैर साहब ही फिर अवाबीन में दो पारे जो है ना बाबा को पढ़ा रहे थे। मगरिब की नमाज के बाद में हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह उनके पीछे दो पारे सुनते थे, फिर वो तरावी पढ़ाते थे, फिर उसके बाद 10 पारे मस्तूरात में पढ़ते थे। और मौलाना जुबैर साहब को जो आदमी देखा हुआ है मालूम है, सब सारे काम बैठ के करना पड़ता था उनको, और फिर उसके बाद तहज्जुद में भी सुनाते थे। सोते कहाँ थे? ऐसे लोग हैं मुजाहिद, निजामुद्दीन के मुजाहिद वाले बड़े अजीब होते हैं, वहाँ के हालात ही अलग हैं, वहाँ के अमार ही अलग हैं, उनका उनके दीन का लेवल ही अलग है। हज़रत मौलाना साद साहब के भी ऐसे हालत हैं, उनके घर के भी ऐसे हालात हैं, उनका तकवा, उनकी तिबा सुन्नत, उनका इल्म बहुत गहरा है, वो शेखुल हदीस हैं, वो लोग मामूली आदमी हैं, उलमा उनकी मुखालफत कर रहे समझ रहे हैं भाई, वो भी एक टाप का आलिम है, मामूली चीज़ थोड़ी हो, टाप के उलमा में से हैं। बांग्लादेश गए थे तो वहाँ पे जो है ना एक फतवा दिखा दिया एक साहब ने, वो फतवा उसकी नकल है मेरे पास, हैदराबाद में है, उसमें लिखा हुआ है कि साहब जो है ना हाफिज है ना आलिम है, ऐसे ही शरारत करता है, लिहाजा उसके उसकी उस उसको नहीं मानना चाहिए। अच्छा ये आप हैरत करेंगे, ये फतवा किसका था मालूम? 8 हज़ारी जो मदरसा है उसके मोहतमिम का था ये, 8 हज़ारी के मदरसे के मोहतमिम का फतवा, उसकी जीराक्स है मेरे पास। तो बड़ा आलिम, तो बड़े मदरसे का जिम्मेदार, ऐसा लिख दिया। खैर ये खत मौलाना के पास पहुंचा, वहाँ साथ साहब के पास। तो हजरत सुना, मैंने पूछा हजरत ने पढ़ने के बाद कुछ देखा क्या, कुछ कहा गया? तो फिर मैं हाँ, एक साहब ने बताया कि हाँ हजरत ने देख के कहा कि भाई बस ठीक है भाई, अब मैं हाफिज हूँ नहीं हूँ अलग बात है, बकिया 35 साल से तरावी तो पढ़ा रहा हूँ बल्कि बोल के, 35 साल से कुरान पाक सुना रहा हूँ बोल के। और जहाँ तक आलिम का ताल्लुक है, 27 साल हो गए मुझे अबू दाऊद शरीफ पढ़ाते हुए बोल के बोले, वो भी जब है जब मौलाना जुबैर साहब पढ़ाते थे बुखारी शरीफ, हजरत मौलाना जुबैर साहब के बाद तो क्या हजरत ही पढ़ाते हैं बुखारी में, शेखुल हदीस साहब की। खैर मैं ये इस पर सुना है कि रमजान मुबारक जो है वो कुरान पाक की अमाल की कसरत का, कुरान पाक की तिलावत का महीना है, मर्दों के अमाल औरतों के अमाल में कुरान पाक की तिलावत में मशगूल, बात कम कर दो एकदम, बस जब देखो जब कुरान पाक लगे। हमारे हमारे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को हमने देखा कि रोज़ाना कुरान शरीफ एक पढ़ते थे, ये कुरान शरीफ पूरा पढ़ने का मामूल था। मौलाना अब्दुल गफूर साहब कुरैशी के वालिद थे, जब सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़े लातूर में, मौलाना अब्दुल गफूर कुरैशी हैं, बुजुर्ग गुजरे हैं हज़रत मौलाना हुसैन मसीह मदनी के खलीफा, उनके वालिद थे, उनके हमेशा हाथ में कुरान शरीफ रहता था, किसी से बातचीत नहीं करते। अब जब कुरान शरीफ हाथ में पकड़ के आदमी कुछ ना कुछ पढ़ते रहा तो बात करने में भी आदमी सोचता ना भाई इससे बात करना नहीं करना, इन्हें बिजी है बोल के। दोनों जो है ना पढ़ते भी रहते थे और हाथ में कुरान भी रहता था, जहाँ बैठते थे वहाँ कुरान खोल लेते थे, जब चलते फिरते थे वो भी पढ़ते रहते थे, कोई आदमी उनसे बात भी नहीं करता था। उनके बारे में भी मैंने सुना है कि वो कुरान पाक रोज़ाना मुकम्मल कर लेते थे, रमज़ान के अलावा की बात है, उन लोगों ने इख्तियारी मशगले को किया कुरान पाक की तिलावत। एहतिकाफ़ का अहतमाम इसीलिए ताकि इख्तलात मालाना मखलूक के साथ में इख्तलात जो है ना कम होने की आदत हो जाए, इसको काबिल इलाज समझते हैं आजकल। अगर आदमी किसी से मिल रहा नहीं है, जुड़ रहा नहीं है, अकेले में हो गया है बिल्कुल, अरे भाई क्या है इसका इलाज कराओ, इन्हें किसी से मिलता नहीं, किसी से जुलता नहीं, अरे मियाँ ये तो बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है लोगों से कम मिलने की आदत, जितना कम मिलेंगे आप कम बात करेंगे, कम बात करेंगे कम मुसीबत में फंसेंगे। 20 बड़े गुनाह आदमी की जुबान से मुतालिक हैं, अगर आदमी बात करने में मोहतात नहीं हुआ तो बड़े गुनाहों में से कौन से गुनाह में मुबतला हो रहा नहीं मालूम, वो भी 20, इमाम गजाली ने 20 की तफसीर अकल फरमाई, 20 बड़े गुनाह, कबीरा गुनाह बोलना जो है ना बड़ी मुसीबत है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि खामोशी माने दारत के दर गुफ्तन नमी आए, खामोशी ऐसे माना रखती है कि बात में नहीं आ सकते, बोलने में नहीं आ सकते, यानी उसमें इतनी खूबियां हैं कि बयान नहीं की जा सकती, एक मतलब उसका ये है, और दूसरा मतलब ये है कि खामोशी में ऐसी खूबी है कि बोलने में वो खूबी नहीं है। अलबला मुवक्कल बिन्नुत्क। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मरतबा एक साहबी पहुंचे घर में, देखा वो अपनी जुबान को खींच रहे थे, भाई ये क्या कर रहे हैं आप? तो कहने लगे बस इसको सता, इसको तंग कर रहा हूँ, क्यों यही तो है इन्हादा औरतन मवारिद, यही तो है हलाकत में डालने वाली चीज, बात ऐसे बेमौका बात करवा देती है कुछ, हालांकि वो खुद ही कितनी मोहताज थे। एक मरतबा देखा कि वो पत्थर मुंह में पकड़े हुए हैं, क्योंकि जब किसी से बात करना पड़े तो पत्थर को मुंह से निकाल के बात करना पड़े, तकल्लुफ होता है ना, जब तक सोच लेते हैं वो जरूरी बात नहीं करता फिर आदमी, जितने कम मिलना हो जाए उतना अच्छा है। लेकिन ये कम मिलना और कम बोलना जो है ना, अल्लाह तबारक व ताला के जिक्र के लिए और तिलावत के लिए है, स्मार्टफोन देखने के लिए नहीं है। बाद बच्चे जो है ना मिलना उलना छोड़ दिए तो लड़ाई झगड़े से तो बच गए, पंचायत नहीं पाल रहे हैं, हर नए नया से मसला नहीं आ रहा, लेकिन काम दूसरा लग गया है, तो वो तो कम मिलना कहाँ हुआ, वो तो ज्यादा मिलना हो गया, कम बोलना नहीं हुआ लेकिन कम ज्यादा सुनना हो गया, ज्यादा बोलना नहीं भी हुआ अगर तो सुनना ज्यादा हो गया, वो एक ही बात है, वो इंतशार दिल में लाना, अंदरून में इंतशार आता है बोलने से भी और मिलने से भी, और इंतशार जो है ना यकसोई को खत्म करती है, अब यकसोई बहुत बड़ी नियामत है। हजरत सूफिया जमीयत खातिर का बड़ा अहतमाम करते हैं, जमीयत खातिर का मतलब दिल के अंदर यकसोई रहना, तो देखो रमजान की तरतीब कितनी प्यारी अल्लाह तबारक व ताला ने रखी है, हो सकता है कि सूफिया ने मुजाहिदत हुक्मिया का इस्तेमाल इसी से किया हो, यहाँ से किया हो, और जगहों में से यहाँ से भी मिल गया होगा उनको, रोजे के जरिए से, तरावी के जरिए से, एतकाफ के जरिए से, कुरान पाक की तिलावत के जरिए से, ये चीज़ें अपने ज़ात में अमल हैं और मुस्तकिल मकसूद हैं, उसके साथ साथ ये है कि इनके ज़रिए से ख़ास इस्तेदाद आती है, और वो इस्तेदाद है आदमी को मुजाहिदे हकीकिया पर आमादा करने वाली लाने वाली, क्योंकि मुजाहिदे हकीकी यानी अल्लाह के हुक्म को पूरा करना, जिस वक्त का जो हुक्म है, आंखों से मुतालिक जो हुक्म है, कान से मुतालिक जो हुक्म है, जुबान से मुतालिक जो हुक्म है, पेट से मुतालिक जो हुक्म है, कमाने से मुतालिक जो हुक्म है, खर्च से मुतालिक जो हुक्म है, मोहब्बत से नफरत से मुतालिक जो हुक्म है, सिला रहमी से कताकत रहमी से मुतालिक जो हुक्म है, हुकूक की अदायगी से मुतालिक जो अहकाम है, ये असल दीन होते हैं ये, कि उस पर अगर आदमी अमल कर लिया तो हकीकी मुजाहिदा उसका हो गया। दीन की मेहनत से मुतालिक जो हुक्म है, दीन के लिए सफ़र से मुतालिक जो हुक्म है, दीन के लिए जान माल लगाने से मुतालिक जो हुक्म है, दीन फैलने का जज्बा और दीन की हिफाजत का जज्बा और दीन की खिदमत का जज्बा और अल्लाह को खुश करने के लिए कुछ कुर्बानी अल्लाह के लिए देना, ज़्यादा से ज़्यादा कुर्बानी देना, जान माल को लुटा देना, निछावर कर देना, फिदा कर देना, ये मुजाहिदे हकीकी कहलाते हैं सब। अल्लाह करे कि रोज़ों को रमज़ान मुबारक के ज़रिए से दीन पर चलने की इस्तेदाद भी अल्लाह पाक हमारे अंदर पैदा फरमा दे। आखिर दुआएं हैं اللهم صل على سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا وعلى محمد وعلى آل سيدنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته يا ارحم الراحمين ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيتها ويسرتها يا ارحم الراحمين وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله